नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट।
फिलिस्तीनी संगठन हमास के आतंकी हमले और इसराइल के काउंटर अटैक के बाद मध्य पूर्व का तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इन हमलों के बाद दुनिया साफ तौर पर दो गुटों में बट गई है, जहां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी खुलकर इसराइल के पक्ष में बोल रहे हैं, वहीं ईरान और रूस फिलिस्तीन के। इसराइल से रिश्ते सामान्य करने की ओर बढ़ रहे सऊदी अरब की दुविधा भी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए साफ कहा कि भारत आतंकवाद के हर रूप के सख्त खिलाफ है। देश की जनता इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ खड़ी है। भारत के इस स्टैंड का असर अरब देशों से हमारे संबंधों पर तो नहीं पड़ेगा? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर संजय भारद्वाज। प्रोफेसर भारद्वाज, अरब देशों से हमारे रिश्ते नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, मध्य पूर्व के देशों से रिश्ते मधुर करना मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी मानी जाती है, लेकिन हमास के हमलों के बाद भारत ने इसराइल के पक्ष में जो स्टैंड लिया है, इसका कोई असर अरब देशों से हमारे रिश्तों पर पड़ता देखते हैं क्या आप?
देखिए, मोटे तौर पे अगर आप भारत का अरब देशों के साथ संबंधों को देखते हैं तो भारत का अरब देशों के साथ डेवलपमेंटल रिलेशंस है। हमारे ज्यादातर आर्थिक संबंध है और निश्चित रूप से जो हिस्टोरिकली हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे और कॉपरेशन किया, वो भी संबंध रहे। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा है वो मुद्दा है आतंकवाद का मुद्दा है। जिस तरीके से जो वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर हमास, जो एक इस्लामी चरमपंथी संगठन है, वो दक्षिणी इसराइल में जैसे घुसा और उन्होंने लगभग 700 इजरायली नागरिक को मार गिराया, ये एक बहुत बड़ा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, एक टेररिस्ट अटैक है। और भारत भी क्योंकि आतंकवाद से ग्रसित रहा है और भारत दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए समर्थन जुटाता रहा है, तो निश्चित रूप से कोई भी आतंकवादी घटना होती है, चाहे वो इसराइल में होती है, अमेरिका में होती है या कोई भी और मुल्क में होती है, भारत कड़ाई से उसका विरोध करता है। और यही एक मौका है कि जब भारत आज आतंकवादी जो अटैक हुआ है इसराइल पर, उसमें नेतन्याहू के साथ में, इसराइल के साथ में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि जो हमास है वो फिलिस्तीन की बात करता है, लेकिन जो लड़ाई है ये लड़ाई निश्चित रूप से कोई सेना, दो सेनाओं के बीच में लड़ाई नहीं है। इन्होंने आम जनता में, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे और जो आम लोग थे, उन पर अटैक हुआ है, ये निंदनीय है। और इस तरीके के कोई भी अटैक, भारत क्या, कोई भी जो देश है जो रेशनली सोचता है और जो शांति की बात करता है, सहिष्णुता की बात करता है, उसको कंडेम करेगा। भारत ने भी कंडेम किया और इसमें कोई भी सऊदी अरबिया के देश या अरबियन वर्ल्ड के देश इसमें कोई बुरा नहीं मानेंगे। कोई देश खुल के साथ नहीं आया है, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, यूएई हो या बाकी जो देश है, उनको अभी ये बात एहसास है कि ये आतंकवादी हमला है। और दूसरी बात ये भी कि जो कुछ दूसरे देश हैं, जिसमें यमन है, सीरिया है, ये सब अपने अपनी संकटों में उलझे हुए हैं। लीबिया हुआ, ईरान में भी बड़े संकट है। ईरान ने खुल के तो नहीं कहा कि हम हमास के पीछे खड़े हैं, लेकिन ये बात जरूर उठाया कि जिस तरीके से फिलिस्तीनियों का कोज है और कंसर्न है, उसको इजराइल कैसे उसको दमन करता रहा है, ये बात ईरान ने उठाई।
जी, भले ही अरब देशों से रिश्ते एकदम ना टूटे, लेकिन अगर इनमें एक ठंडापन भी आया तो इसका असर दूरगामी हो सकता है क्या? पिछले महीने ही भारत से मध्य पूर्व होते हुए यूरोप तक के आर्थिक गलियारे का ऐलान किया गया। इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बाद मध्य पूर्व में फैले तनाव का असर इस गलियारे पर पड़ सकता है क्या?
देखिए, मैं मोटे तौर पे कहूंगा कि भारत के जो अरब वर्ल्ड के साथ जो संबंध है वो कोई आदर्शवादी संबंध नहीं है, एक यथार्थवादी संबंध है। और अरब वर्ल्ड क्योंकि तेल उत्पादक देश है और उनको भी मार्केट की तलाश है। भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और निश्चित रूप से अरब देशों के लिए भारत एक नेचुरल मार्केट है। और भारत के साथ भी, चूंकि भारत चाहे यूएई हो या सऊदी अरबिया हो, इनमें बड़ा इन्वेस्टमेंट कई क्षेत्रों में कर रहा है, वो भी अपना डेवलपमेंटल है। तो मैंने कहा कि अरब और भारत के बीच में डेवलपमेंटल पार्टनरशिप है। इससे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कॉपरेशन है, जो पार्टनरशिप डेवलप हो रही है भारत और अरबियन वर्ल्ड के साथ में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी हमने U2, I2, उसमें इसराइल जुड़ा हुआ था, सऊदी यूएई जुड़ा हुआ था, अमेरिका जुड़ा हुआ था, तो वो डायलॉग हो रहे थे, डिस्कशन हो रहे थे, और उसको G20 समिट में जो मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर जो डेवलप हो रहा है भारत के लिए, मिडिल ईस्ट के यूरोपियन कंट्रीज में, निश्चित रूप से एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप या कनेक्टिविटी को एड्रेस करता है। और मुझे नहीं लगता कि इसराइल और चूंकि इसराइल और फलस्तीन कोई नया संकट नहीं है, ये बहुत पुराना संकट है, और जब से अब्राहिम अकॉर्ड हुआ है तब उसके बाद से जो सऊदी अरबिया है उसको भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहे। मिस्र का आप जब कैंप डेविड समझौता हुआ उसके बाद मिस्र भी एक तरीके से संतुलित है, तो आप मान के चलिए इस कॉन्फ्लिक्ट में जो अरब जो 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 इसराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कोई सीधा फलस्तीन के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से कंसर्न सबका है कि जो कोलेटरल डैमेज होता है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत सेलेक्टिव स्ट्राइक होना चाहिए और हमास के जो आतंकी उनको मार गिरा देना चाहिए।
वैश्विक पटल पर भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरह से उभर रही है उसे देखते हुए कोई भी देश अपने द्विपक्षीय संबंध हमसे बिगाड़ना नहीं चाहेगा। भारत अपना स्टैंड लेते हुए साफ कर चुका है कि वो हर तरह के आतंक के खिलाफ है। अरब देश क्या इस बात को समझेंगे? क्या वे रिश्ते सामान्य बनाए रखने के लिए कोई बीच का रास्ता अपनाना चाहेंगे?
निश्चित रूप से, देखिए अरबियन कंट्रीज पिछले जब आप अरब स्प्रिंग हुआ था और यमन हुआ, लीबिया हुआ या सीरिया हुआ, या इन कंट्रीज में जो प्रॉब्लम्स आई थी, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, आंदोलन हुए थे, उनसे ये देश इन देशों में एक चिंता का विषय बन गया था। ये देश नहीं चाहेंगे कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अगर डिस्टरबेंस होता है उसका अरबियन वर्ल्ड के रिश्ते, खासकर जो आर्थिक रिश्ते हैं, जो आयात निर्यात के, खासकर जो तेल उत्पादन करते हैं उसके लिए मार्केट भारत जैसे देश हैं, उनके साथ किसी भी तरीके के रिश्तों में कटास नहीं लाना चाहेगा। देखिए मोटे तौर पे आप देखते हैं कि भारत और अरबियन वर्ल्ड के बीच में व्यापारिक संबंध बहुत ज़्यादा है, और आप लगभग 80 लाख लोग भारत के इन देशों में रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक कम्युनिटी जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा स्टेक इन देशों का भारत का इनके साथ में लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से भारत नहीं चाहेगा कि सऊदी अरबिया या अरबियन वर्ल्ड के साथ किसी भी तरीके के संबंध खराब हो। भारत में भी एक बहुत बड़ा रेमिटेंस जो आता है वो गल्फ कंट्रीज से आता है, और भारत चूंकि एक नेचुरल मार्केट है ऑयल के लिए, तो रिश्ते नहीं चाहेंगे। दूसरी तरफ ये भी बात है कि भारत ने पिछले कुछ दशकों से इसराइल के साथ भी अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया है, खासकर रक्षा तकनीकी क्षेत्र में या सुरक्षा के मुद्दों पर दोनों देश बहुत नजदीक आए हैं, और जो दूसरे चाहे वो जो मेडिकल सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, देखिए भारतीय पाठ्यक्रम तेल अवीव यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, हाइफा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, हिब्रू यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, लगभग 14,000 भारतीय इसराइल में रहते हैं, 85,000 जो यहूदी हैं आज इसराइल में हैं वो भारतीय मूल के लोग हैं, तो ये बहुत एक मजबूत इसराइल के साथ भी संबंध हुआ। इसराइल का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि इसराइल ने 1999 में कारगिल अटैक हुआ तो भारत के साथ खुले तौर पर समर्थन किया, जो कि कभी भी अरबियन वर्ल्ड को कभी भी इसराइल अरबियन वर्ल्ड कभी भी पाकिस्तान के मुद्दे पे बहुत खुल के साथ नहीं आया। अभी निश्चित रूप से कुछ वर्षों से बदलाव आया, खासकर मोदी के सत्ता में आने के बाद में हमने यूएई के साथ, सऊदी अरबिया के साथ में आर्थिक और आप ये कहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिश्तों में विकास किया है।
जी, तो इन रिश्तों में बहुत ज्यादा दरार आने की उम्मीद आप नहीं देखते हैं। अब बात करें अगर इसराइल और मध्य पूर्व के नए बनते रिश्तों की, 2020 में यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान ने इसराइल से रिश्ते सामान्य कर लिए थे, सऊदी अरब अब इस दिशा में बढ़ रहा था, अभी पिछले महीने ही संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि सऊदी अरब और इसराइल के बीच अहम शांति समझौता होने वाला है जिसके बाद एक नया मध्य पूर्व बनेगा और फिलिस्तीनियों के साथ स्थायी शांति की तरफ बढ़ सकेंगे। लेकिन हमास के घातक हमले ने इस उम्मीद पर तो पानी फेरा ही। नेतन्याहू को अब ये कहना पड़ गया कि मध्य पूर्व की तस्वीर ही बदल देंगे हम। तो ये जो बातचीत अंजाम तक पहुंचने वाली थी, क्या उसे नाकाम करने की कोई बड़ी साजिश दिखती है हमास के व्यापक तैयारी वाले हमलों में? क्योंकि बिना मदद के ऐसे हमले संभव नहीं। ईरान की भूमिका की बातें हो रही हैं, रूस चीन के भी अपना दबदबा वापस कायम करने की संभावनाएं दिख रही हैं।
देखिए, आप अगर मोटे तौर पे देखते हैं और बैकग्राउंड में जाते हैं तो पहले जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन वो बाद में इसको फिलिस्तीन इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के नाम से देखते हैं। जब ये अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट था तो अरबियन वर्ल्ड को रशिया, जो फॉर्मर यूएसएसआर है, वो समर्थन देता था और अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा था। अमेरिका हमेशा इसराइल के हितों की रक्षा, चाहे वो अरबियन वर्ल्ड हो, मिडिल ईस्ट हो या दूसरी दुनिया के क्षेत्रों या यूएन में, हर जगह इसराइल के हितों की रक्षा अमेरिका करता था। अब चूंकि जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ और सीधा सीधा अमेरिका का जो प्रभुत्व था, जो सऊदी अरबिया और इन कंट्रीज में इन्होंने महत्वपूर्ण समझौते कराए, खासकर मैंने अब्राहम अकॉर्ड की बात कही या कैंप डेविड समझौते की बात की, ये सब समझौते हुए और इससे थोड़ा जो इसराइल का है वो एक्सेप्टेबिलिटी अरबियन वर्ल्ड में बढ़ी। क्योंकि अमेरिका इस हमेशा से इसराइल के लिए इन देशों में लॉबिंग करता रहा है, लेकिन चूंकि अभी एक नए बदलते परिवेश में जहां पे हम देखते हैं कि विश्व जो है वो दो भागों में या पोलराइजेशन हो रहा है, एक जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं अमेरिका के नेतृत्व में, यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसराइल उनके साथ खड़ा है, वो लामबंद हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो रॉक स्टेट हैं, खासकर जो अथॉरिटेरियन स्टेट हैं, उसमें मैं रशिया की बात करूंगा, ईरान की बात करूंगा या नॉर्थ कोरिया की बात करूंगा, और कहीं अप्रत्यक्ष रूप से चीन भी इनके साथ खड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये इस बात को तूल देना चाहेंगे, चिंगारी देना चाहेंगे कि जो हमास है या अरबियन वर्ल्ड है या मुस्लिम वर्ल्ड है वो ईरान को सीधी चुनौती दे। और ये बात मान के चलिए कि जिस तरीके का इसराइल को चुनौती दे, ये बात मान के चलिए कि देखिए जिस तरीके से इसराइल में अटैक हुआ है, तो जो हमास ने अटैक किया है वहां की जो खुफिया तंत्र है, इसराइल की खुफिया तंत्र है, उसको पता ही नहीं लगा, मोसाक को पता ही नहीं लगा, यानी कि तैयारी कहीं और हुई है। इसका जो हमास का मुखिया है वो कतर में बैठा हुआ है, ईरान की तरफ भी इंडिकेट किया गया, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई ताकत हमास को समर्थन दे रही है। लेकिन चूंकि आतंकी हमला है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी इसको जोर शोर से उठा रही है और इसराइल इसको युद्ध के रूप में घोषित कर चुका है, अमेरिका ने अपना फ्लीट वहां पे भेज दिया है, तो ये बात मान के चलिए कि सीधी सीधी एक चुनौती है अरबियन वर्ल्ड को, और इस चुनौती को ये मिलिट्रीली क्रैश डाउन करना चाहते, खत्म करना चाहते, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी अरबियन वर्ल्ड खुल के इनके खिलाफ खड़ा होगा। ईरान भी खुल के इनके खिलाफ खड़ा नहीं है, आंतरिक रूप से सहायता देने की बात जरूर हो रही है, कहीं पर सीरियाई लड़ाकों की बात हो रही है, कहीं हिजबुल्ला की बात हो रही है, ये बातें आ रही है, लेकिन ये सब वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स है, आतंकी संगठन है, इनके दम पे फिलिस्तीन खड़ा नहीं हो पाएगा। और अमेरिका और इसराइल जो कि एक मिलिट्री पावर है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस पावर है, इनको क्रैश कर देगी।
जी, तो भारत के इसराइल के प्रति स्टैंड का अरब देशों से संबंधों पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये रिश्ते आपसी हितों पर टिके हैं और भारत जैसे बड़े बाजार की अनदेखी अरब देश नहीं कर सकते। प्रोफेसर भारद्वाज, शुक्रिया आपका।